दक्षिणा ุรสกาจะตถาวรตานิวรจะตถาเบิกานุกรมา
เอกเอก
ครั้งเกศสารีเดวตา
कल
पाहा विशिष्ट शास्त्र संकल्पाहा विशिष्ट प्रयोजन तंत्रम विशिष्ट विधि एवा विजेसी चा भी अनुमान तात्पर्य श्रीमद् श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं को विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्र तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आह्वान सम्मिलित है। ये आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। इनमें विशेष स्वर के साथ शब्दोच्चारण करना होता है। यह एक महान विज्ञान है किंतु 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे कृत्य प्रभावपूर्ण नहीं रहे हैं, नहीं इस पतित काल में इसकी संस्तुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चतुर्पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी है। अतः इन यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक भौतिक सहाय द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकवादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति चाहते हैं जिस पर वैदिक मंत्र की स्थापना हुई। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्याओं का हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। अगर भौतिकवादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है, क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है। अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य भगवान के पवित्र नाम के आह्वान की प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति करते हैं। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में लागू होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन गुरुतवे स्वयं रूपकदामज्ञं ददातीश्वरपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीजतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारिजातं सहगणारघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सारदूतं परिहंसैतं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्ण पादां सरगणावलिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभां सुते देवी प्रणमामि श्रीहरित्वे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय का नाम है पुरुष शक्ति की पुष्टि। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पतन्त्रमेव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आह्वान सम्मिलित है। ये आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन के पहले विराट पुरुष भगवान गर्भरक्षायी विष्णु जो इस ब्रह्मांड के नायक है, गर्भरक्षायी विष्णु जिनके नाभि से कमल पैदा होता है और कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने के लिए सर्वप्रथम उनको ये सारी जानकारी होने की आवश्यकता है। ये जानकारी बिना कि भगवान ही उद्गम है, भगवान कैसे ये सारी सृष्टि जो पैदा होने वाली है इसमें जो जो तत्वों की आवश्यकता है उसका विकास अपनी शक्ति द्वारा कैसे करते हैं, क्योंकि यदि भगवान सर्व कारणों के कारण है तो ये कारण कभी ब्रह्मा जी को अपना कर्तव्य करते सृष्टि का सृजन का कर्तव्य करते हुए कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। यदि विस्मरण होता है और गुरु के प्रभाव में वो प्रथम जीव होने के कारण वो भी फंस जाते हैं, भगवान का विस्मरण उनको ये भौतिक तीन गुणों के प्रभाव से बुला दे, विस्मरण जब आ जाता है तब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते, उनको इतनी सावधानी रखनी पड़ती। तो हमारे जैसे इतनी बात ही क्या, यहां सर्वप्रथम विराट पुरुष यानी कि सारे भौतिक तत्व जो सूक्ष्म से स्थूल स्वरूप में जो पैदा होते हैं इनका समूचा रूप भगवान का विराट रूप कहलाता है। ये भौतिक रूप, भौतिक सृष्टि में जो जो शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्ति से पैदा होती है ये शक्ति का प्रादुर्भाव या उसकी उपस्थिति इसका प्रकटीकरण ही भगवान को साबित कर सकता है, अन्यथा अपने पास कोई भी दलित बाजी नहीं है या अपने पास कोई भी ऐसे अनुभव कराने वाले अपनी इंद्रियों की मर्यादा कोई शक्ति इस मर्यादा है। तो ये भगवान की शक्ति का जब प्रकटीकरण होता है तो भगवान की ही शक्ति स्वरूप में बदल, शक्ति का स्वयं का कोई स्वरूप नहीं, लेकिन जो भगवान के आध्यात्मिक गुणों अंदर जब दाखिल होते हैं तब गुण का कर्तव्य है शक्तियों को बांधना, जब शक्ति बंधी जाती है तब स्वरूप पर प्रकट होता है, यानी कि गुण और शक्ति का सम्मिश्रण को स्वरूप कहते हैं। तो ये विराट रूप विराट स्वरूप जो होता है भगवान का, तो ये भौतिक शक्तियों और भौतिक गुण भगवान के ही पर, इनके शक्ति द्वारा ही पैदा हुए, भगवान के दखलगिरी से ये तीन गुण पैदा हुए। नहीं तो कालोदक्षाय विष्णु महाविष्णु से दृष्टिपात करते हैं और बाद में योग निद्रा में चले जाते हैं। जब ये दृष्टिपात दखलगिरी करता है भौतिक शक्ति के साथ भगवान के आध्यात्मिक गुण कोई चेष्टा नहीं करते, लेकिन इनकी उपस्थिति होने के कारण ही भौतिक शक्ति गर्भवती बनती है, पैदा करने लगती है। सइक्षति सइमान लोकान असृजत, भगवान ने दृष्टिपात करते ही सारे लोगों का सृजन करना शुरू कर दिया। तो ऐसी इनकी दिव्य शक्ति है, भगवान की उपस्थिति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भौतिक शक्ति को भी एनिमेट करती है। एनिमेट या ना हिंदी में क्या एनिमेट, एनिमेट यानी कि अंदर
सब जीवन का संचार करने वाले। वैसे एक कार्टून का चित्र होता है, लेकिन उसमें आवाज दे दो, कोई हलन चलन दे दो, ये करामत जो है उसे एनिमेशन कहते हैं, उसको डायनेमिक बना देते हैं, बहुत कार्य कुशल बना देते हैं, बोलने का इनका हलन चलन। तो हमें ये लगता है कि कार्टून भी जीवंत जीवंत करने की शक्ति, ये भगवान की अंतरंग शक्ति की उपस्थिति द्वारा होती, बहिरंग शक्ति इसको स्थूल या सूक्ष्म रूप से मौजूद होती, लेकिन स्थूल स्वरूप में लाने का भी जो कारण है वो भगवान की अंतरंग शक्ति की उपस्थिति है, इसीलिए सर्व कारण काम कर रहा है। तो यह विराट रूप में भगवान का जो स्वरूप बना है उसमें आंखें इंद्रियां सब प्रकार की, उनके हाथ सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपा हजारों मत्थे वाले, हजारों हाथ वाले, ये पुरुष सूक्त में भगवान के विराट रूप का वर्णन है। और इस पुरुष सूक्त ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम बुलाया जाता है, लेकिन ब्रह्मा प्रशिक्षित कैसे हुए ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है। ब्रह्मा को जानता भी कैसे, नहीं तो वो भी हमारे जैसे अज्ञानता में ही तो जन्म लिया था। और ये प्रथम जीव जब ये अंधकार में पैदा होते हैं तो उसको ज्ञान देने का माध्यम क्या है, तो वहां शब्द ब्रह्म, शब्दों द्वारा भगवान ब्रह्मा जी को प्रेरित करते हैं वो ज्ञान की पुनः जागृत करने के, क्योंकि यदि ब्रह्मा अपने रात्रि में सो जाते हैं और जगते हैं तो विस्मृति में ही जगते हैं, फिर से उनको सब याद करना पड़ता है कि मैंने अगले युग में क्या किया था। तो पहले वाले सृजन में जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही पुनः ब्रह्मा जी जब पैदा होते हैं तो उनको वैसे ही शुरू करना होता है, यानी कि ब्रह्मा की स्मृति में उनके मरने के बाद कुछ नहीं रहता, लेकिन उसको पुनः जागृत करने के लिए वो भूल गए हैं, इसलिए पुनः जागृत करने के लिए भगवान तप तप दो बार बोलते हैं। ये शब्द ब्रह्म जिसके द्वारा, ये शब्द द्वारा जब भगवान के मुख में से निकला है और ये शब्द द्वारा ही ब्रह्मा प्रशिक्षित होते हैं, तो सब जानकारी करने के लिए वो तप करने लगते हैं। तप इन सारी शुद्धियों का माध्यम बताया जाए, और ये तप है और ये यज्ञ की बात कर रहे हैं। तप द्वारा ब्रह्मा को जानकारी होती है, अभी यज्ञ द्वारा उसे कार्य संपादन करते हैं। और कहां से लाएंगे ये सारी चीजें, विराट के अलावा कुछ है ही नहीं, यानी कि भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान के अंगों का ही उपयोग करके वो यज्ञ करें। आप भगवत गीता में तीसरे अध्याय में ये बताया कर्मयोग में ब्रह्म की उपासना क्यों करनी चाहिए, भगवान की उपासना क्यों करनी चाहिए, अपने कर्मों द्वारा हम गृहस्थों को कितनी जिम्मेदारी दी है कि हम यज्ञ करें। यज्ञ भगवान की प्रति के लिए किया गया कर्म यज्ञ कहलाता है। यज्ञ अर्थात अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। सिर्फ भगवान विष्णु जो यज्ञपति कहलाते हैं, यज्ञ यज्ञेश इनके प्रति के लिए किया गया कर्म ही कर्म बंधन से छुड़ाया जाए, छुड़ाने के लिए शक्तिमान है, अन्यथा अन्यत्र कोई भी दूसरा उपाय कर्म बंधन में फंसाने वाला। तो ये गृहस्थों को यज्ञ करने की सर्वप्रथम जिम्मेदारी, ब्रह्मा जी परमेष्ठी कहलाते हैं, इनका नाम परमेष्ठी क्यों है, ये सबसे बढ़िया तरीका है वो जान लेते हैं। और यज्ञ तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ब्रह्मार्पणम यदि ब्रह्मानो ब्रह्मणा तम ब्रह्मेन एन दंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ये यज्ञ है ब्रह्म के समान। वो सारी जो श्रृंखला दी है, एक एक मनुष्य अर्जुन को बताते हैं ऐसे सब के पीछे, सब शक्तियों के पीछे जो मनुष्य उधार ले रहा है उसके पीछे मैं, मेरी शक्ति है। ये शरीर भी भौतिक तत्व का है, पंच महाभूत का है। उसमें जो सारे अंग है, उसमें जो सारे तत्व है, यज्ञ के लिए निर्मित है। जैसे भगवान का विराट रूप भी पुरुष सूक्त में जिनकी स्तुति की गई है, वो शरीर को भी भगवान ब्रह्मा जी को उपयोग करना पड़ा। यानी कि इन शरीर में से जो प्राप्त हुआ है विराट रूप में से, वो ब्रह्म के लिए है। क्योंकि भगवान का शरीर ब्रह्म और ये प्रक्रिया, इनमें कोई अंतर, ब्रह्म कर्म समाधि। हम यज्ञ में जो आहुति देते हैं, तो आहुति के जो सारे तत्व है, अंग है, वो ब्रह्म के समान हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो कर्तव्य में ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए ही आहुति दी जाती है। तो आहुति देने का जो प्रयोग है और आहुति में जो हम चीजें डालते हैं, उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए ब्रह्म कर्म समाधि ना, अपना कर्म हमें ब्रह्म के पास पहुंचाता है, हमारा कर्म ब्रह्म के पास पहुंचा। यदि हम ऐसे यज्ञ नहीं करें तो न तो कर्म बंधन से छुप सकते हैं, न भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यहां देवताओं का उल्लेख नाम दिया, क्योंकि इस विराट रूप के सारे अंग देवता बता रहे, विराट रूप के सारे अंग देवता बता। इतने नहीं, ऋषि हैं और ये तो सब प्रजापति हैं। तो ब्रह्मा ने जैसे प्रजा पैदा की, मानसिक पुत्र करे, उसके बाद मनु और शत्रुंबा से गर्भावान संस्कार से मनुष्य पैदा हुए, और ये मनुष्य जिस ढंग से प्रजनन कर रहा, ये सब के पीछे ब्रह्म का कारण होना चाहिए और होना चाहिए। इनको यदि हम भूल कर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के जुड़े रहते हैं, तो हमारी न तो शुद्धि होती है न कुछ। इसलिए जहां तक ये प्रजापति होने का जिसका कर्तव्य है, यानी कि गृहस्थ होगा, तो ये प्रजापति का जो इस तरह हमें रूल लेता है देवताओं का, ऋषियों का, क्योंकि हम इस ढंग से भगवान के अनुकूल होकर यदि प्रजापति पैदा करते तो उसके पीछे इंद्रिय तृप्ति का विषय तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये कर्म भी ब्रह्मार्पण हो जाए, भगवान के प्रसन्न करने के लिए हो जाए। ये तो वो हमें और गता में डालता है। तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम प्रजापति बने, तो इनकी जिम्मेदारी वो कभी भूले। तो इसलिए ब्रह्मा जी जब कहते हैं कि ये धर्म क्या है और ये देवताएं इसमें क्यों शामिल है, जिनके नामों को उच्चारण करते करते इनको भी याद करना पड़ता है कि देखो ये भगवान के शरीर के अंग है, विराट रूप के अंग है, सृष्टि में इनका विराट रूप में स्थान, भगवान के विराट रूप में इनका स्थान, अन्यथा नहीं। विराट रूप भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं, इसलिए आध्यात्मिक जगत में देवताओं का स्थान है, जैसा हमारा स्थान है। वो तो प्राप्त करना होता है ब्रह्म में, ब्रह्म के कर्तव्य, कुशलता से करने चाहिए। उसका अगले श्लोक में हित लिखा है, पहले वाला जो श्लोक है तो उसमें बताया गया है, यज्ञ स्वरूप को संपन्न करने के लिए गुरु भक्ति